जय गोपी जनावल्लभा जगरे वरधारी जगरे वरधारी। जय गोपी जनावल्लभा जगरे वरधारी जगरे वरधारी। जय सोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय ब्रज जनरंजना। जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय ब्रज जनरंजना। यमुना तीरावन चारे जय कुंज बिहारी जय हो यमुना तीरावन चारे जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
हरे कृष्ण।
जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवर धारे जय गिरिवर धारे।
हम गीता प्रेस की
जो जय गिरिवर धारे जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय ब्रज जनरंजना।
अगर हम प्योर
रेलवे में जाएंगे तो ये आएगी अपने अप्रोक्सीमेट 30,000 पैसेंजर। बट इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप
जय रमो नती रावण चारे जय कुंज बिहारे जय यमुना तिरावन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गच्छारेष्टोद्रक्ष श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्रीलभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस कॉन्वेंट संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गच्छारेष्टोद्रक्ष श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपा ट्रांसनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की निताय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज All glories to assemble devotees. All glories to assemble devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga.
Hare Krishna. आप सब भक्तों का रविवार के साप्ताहिक उत्सव में हार्दिक स्वागत है और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हमें एक बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष विभूति उपस्थित हैं His Grace Gaurang Prabhu. आप में से अधिकांशता भक्त प्रभु जी से परिचित होंगे फिर भी मैं थोड़ा संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा भौतिक दृष्टि से देखें तो प्रभु जी एक IIT ग्रेजुएट इंजीनियर हैं IIT बॉम्बे से और इस्कॉन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाओं को निभा रहे हैं इतनी युवा अवस्था में भी ये इस्कॉन GBC में गवर्निंग ड्यूटी ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर हैं साथ ही साथ इस्कॉन में जो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का जो टॉप मोस्ट फोरम है GBC कॉलेज उसके ट्रस्टी हैं और GBC ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी के मेंबर हैं डिविजनल डायरेक्टर ऑफ डिवोटी केयर टेंपल डेवलपमेंट सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ इस्कॉन टेंपल वर्ल्ड वाइड और इसके साथ ही साथ प्रभु जी गोवर्धन इको विलेज वाडा आप में से कितने लोग हैं यहाँ वाडा में अपने आप में एक नवा अद्भुत है संसार का और प्रभु जी की निर्देशता में हिज होलीनेस राधा स्वामी महाराज के निर्देशन में प्रभु जी ने उसको पूरा ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया और वो डायरेक्टर हैं गोवर्धन इको विलेज वाडा के और इस गोवर्धन इको विलेज वाडा को बहुत से अवार्ड्स मिले हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इको विलेज कम्युनिटी में इसको अवार्ड मिला और साथ साथ और भी नेशनल लेवल पे अवार्ड्स मिले। और इसके साथ साथ प्रभु जी को प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन चौपाटी में। इस्कॉन चौपाटी आप जानते हैं पूरे विश्व में विख्यात है अपनी सुंदर कम्युनिटी के लिए। और साथ ही साथ प्रभु जी सेवा कर रहे हैं ट्रस्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर फॉर भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर कोलकाता में। इतनी बड़ी उपलब्धियों के साथ साथ प्रभु जी का बहुत गूढ़ अध्ययन है भगवद्गीता भागवतम और चैतन्य चरितामृत में। सारे चैतन्य चरितामृत के प्रयार भागवतम भगवद्गीता श्लोक बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभु जी सुनाते हैं बोलते हैं और शास्त्रों के गूढ़ संदेश को बहुत ही आसानी से समझने वाले ढंग से प्रस्तुत करते हैं। और कई जगह प्रभु जी को कॉन्फ्रेंसिस के लिए बुलाया जाता है और पिछले लगभग 20 वर्षों से अधिक प्रभु जी 10,000 से ज़्यादा डिस्कोर्सेज दे चुके हैं और अपने लेक्चर्स के लिए डिस्कोर्सेज के लिए सेमिनार्स के लिए विश्वविख्यात हैं। इतनी बड़ी उपलब्धियों के साथ साथ गौरांग प्रभु को मैं जो पर्सनली जानता हूँ बहुत ही डाउन टू अर्थ बहुत ही विनम्र उत्कृष्ट साधना। अभी जैसे प्रभुपाद तिरुभाव दिवस हुआ था नवंबर में कार्तिक महीने में तो उसमें 15,000 लोगों का जो प्रसाद था वो पूरा का पूरा प्रसाद प्रभु जी के मार्गदर्शन में बना। केवल मार्गदर्शन में नहीं सुबह सुबह प्रभु जी 4 बजे पहुंच जाते थे और रात के 9 बजे तक। इससे पहले परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज की यात्रा थी जिसमें लगभग 8,000 भक्त थे तो पूरा किचन प्रभु जी ने संभाला। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वहाँ रहते थे, पूरा कुकिंग करते थे, खुद भट्टी पे लगते थे और 4 बजे जब आते थे उससे पहले अपनी 16 माला करके आते थे। तो हम देख सकते हैं कि कितने स्पेशली एम्पावर्ड हैं गौरांग प्रभु। सो वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम। और देखिए सुंदर साधना है, बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट सेवा और बहुत ही प्रेम में संबंध पूरे विश्व भर में भक्तों के साथ। तो मैं अभी ये नोएडा में आए थे एक सेमिनार के लिए तो मैं इनसे रिक्वेस्ट किया, उस समय ये वृंदावन में कुकिंग कर रहे थे तो मैंने जैसे ही फ़ोन किया तुरंत इन्होंने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया और यहाँ आने को तैयार हो गए। कल सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे वापस मुंबई के लिए। तो आइए हम हृदय से प्रभु जी का स्वागत करें हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबसे निवेदन है थोड़ा आगे आगे आ जाइए, पीछे काफी लोग खड़े हैं उनको जगह नहीं मिल रही, यहाँ आगे आ सकते हैं प्रभु जी लोग प्लीज। हाँ टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज प्रभु जी चर्चा करेंगे कैसे वैदिक संस्कृति का पतन हुआ ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप और इस कौन संस्था के द्वारा कैसे हम इसको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। तो आप प्लीज थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, सब टॉपिक हम सबके लिए बहुत रेलेवेंट है। हरे कृष्णा। और अपने मोबाइल फोन को कृपया करके स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे करते।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और इस्कॉन पंजाबी बाग के सभी भक्तों को कि आज संध्याकालीन सत्र में इस विषय पर कुछ चर्चा करने का अवसर दिया कि भारत में किस प्रकार वैदिक सभ्यता और संस्कृति का पतन हुआ। तो आज भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ की है और उसमें युवा लगभग 80 करोड़ के ऊपर है और पिछले 26 वर्षों से इस्कॉन के संबंध में हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रचार कार्य में लगे हैं और देखे हैं कि पिछले 26 वर्षों में भी किस तरह ये पतन होता रहा है। पहले की बात तो दूर की बात है। तो सबसे पहले ब्राह्मणों का पतन, ये जब ब्राह्मणों का पतन कलयुग के आरंभ में आरंभ हुआ तो ब्राह्मणों के पतन के बाद धीरे धीरे वैदिक सभ्यता और संस्कृति को धारण करने वाले जो मूल लोग थे उनके अंदर परिवर्तन आ गया। तो गीता में भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के गुण होते हैं सत्य, शौच, दान इत्यादि। तो ब्राह्मणों के अंदर गुणों के आधार पर उनकी योग्यता निर्धारित की गई है, लेकिन समय के साथ ये गुण नहीं लेकिन जन्म के आधार पर योग्यता निर्धारित होने लगी और पतन का ये पहला कारण। भागवत में भी वर्णन किया गया है, यस्य यत् लक्षणम् प्रोक्तम्। ब्राह्मण अर्थात वो जो ब्रह्म ज्ञान को धारण करे और जो ब्रह्म ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता रखे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो हम देखते हैं कि ब्राह्मणों के अंदर शास्त्रों को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता रही और कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जन्म का क्यों न हो, किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, किसी भी तथाकथित परिवार का क्यों न हो, अगर उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने की क्षमता हो, शिक्षा के प्रति क्षमता हो, ज्ञान को वो स्वीकार कर सके तो वास्तव में सुयोग्य है। तो इसलिए विश्व के कोने कोने में मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में पूरी तरह मग्न हो जाते हैं, वो है ब्राह्मण। जो सत्ता को बढ़ाने में मग्न हो जाते हैं और जो मतभेद और द्वंद्व और युद्ध में कलह में मग्न हो जाते हैं, वो है क्षत्रिय। धन अर्जन की प्रक्रिया में जो मग्न हो जाते हैं वो है वैश्य। और नियमित रूप से सुरक्षा के भावना के प्रति जो आकर्षित हो जाते हैं और अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं सुरक्षा के एक छत्र छाया के अंतर्गत, वो हैं शूद्र। तो इस प्रकार वर्णाश्रम में नियम बताए गए हैं, लेकिन मूल रूप से हम देखते हैं कि पूर्व काल में ब्राह्मणों के अंदर एक क्षमता शक्ति थी कि वो एक बार भी कुछ सुन ले तो वो जीवन पर्यंत स्मरण कर पाते थे। और कलयुग की सबसे बड़ी समस्या आज हम देखते हैं कि स्मरण शक्ति नष्ट होती जा रही है। आज आपने कुछ सुना, आज के प्रवचन में आपका ये पॉइंट सुनोगे, सुनते समय आपको लग रहा है कि वाह सब समझ गए, कल पूछो कि क्या सुना था, आप बोलोगे बहुत बढ़िया था। क्या था? बोले इतना बढ़िया था याद ही नहीं, अनिर्वचनीय। हम लोग जब आत्मा सीरियल का शूटिंग कर रहे थे तो उस समय 2001 में एक साल शूटिंग किया, चैनल ने 9 साल चलाया, 8-9 साल उसी को घुमा रहे थे। 5-6 साल के बाद मैं ही पूछ लिया कि और नया कुछ एपिसोड करें क्या, वो बोले जरूरत ही नहीं, किसी को समझता नहीं पुराना है कि नया है। और सबसे अद्भुत बात हुई कि एक सज्जन मेरे पास आए, बोले ये साल का एपिसोड लास्ट ईयर से ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो वही चीज हम लोग बार बार घुमा रहे हैं। बोले नहीं नहीं इस बार का बहुत बढ़िया है। मैंने कहा लेक्चर तो मैंने दिया। वो बोले नहीं नहीं आप इतना लेक्चर देते हो आपको याद नहीं। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम लोगों की मेमोरी कम होती जा रही है कलयुग में? है कि नहीं। तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि ब्राह्मणों के अंदर जो पूर्व योग्यता थी वो अब नहीं रही। मैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय में घूमा हूं और मैंने देखा है कि पाश्चात्य देश में जिस प्रकार से लोगों ने अलग अलग चर्चों से जुड़े हुए और विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए लाइब्रेरी बनाए हैं, देखने योग्य है। जबरदस्त लाइब्रेरी बनाए हैं, लाखों की संख्या में उसमें ग्रंथ हैं। और पूरे भारत में जब मैं ढूंढने का प्रयास करता हूं कि हमारे पास ओरिजिनली लगभग 7 मिलियन संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन क्या हम उसको बड़े सुंदर दार्शनिक आकर्षक लाइब्रेरी के रूप में रख पाए अथवा नहीं? ये इसलिए हुआ क्योंकि पहले लोगों का ज्ञान पूरा यहीं पर था, तो उनको कभी लगा नहीं कि कुछ आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ये शक्ति क्षीण होती चली गई तो हम देखते हैं कि अब उस बात को खो बैठे हैं। बड़ी दया की बात है कि पूरे विश्व में यूनिवर्सिटी का जब रैंकिंग निकलता है तो पहले 200 नंबर में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। वो भारत जो विश्व को ज्ञान देने के लिए नंबर वन था, जहां पर 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, रामायण और बाकी जितने इतिहास इत्यादि प्रकट हुए, आज किसी प्रकार के शिक्षा के, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दूर दूर तक हम लोगों का कुछ है ही नहीं। दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में 7 तो अमेरिका में ही है, और यहां तक कि अमेरिका के मान लो MIT में लोग एप्लीकेशंस डालते हैं तो MIT में केवल हर साल 1500 एप्लीकेशन स्वीकार किए जाते हैं। हर एप्लीकेशन का कॉस्ट लगभग 75 या 100 डॉलर का होता है। 1500 लोग को ही एडमिशन मिल सकता है, लेकिन हर वर्ष 20,000 लोग अप्लाई करते हैं। एडमिशन मिलता है 1500 लोगों को, लेकिन बाकी जो 18,000 एप्लीकेशन आए उसको अगर मिलाओ तो लगभग 1.3 मिलियन डॉलर आमदनी रिजेक्टेड एप्लीकेशंस का होता है। तो अमेरिका के टॉप 10-15 यूनिवर्सिटीज का रिजेक्टेड एप्लीकेशंस का अगर इनकम देखोगे वही 25 मिलियन डॉलर है, कि जहां लोगों के एप्लीकेशन आए उनको एडमिशन नहीं मिले लेकिन उससे भी कमाया। तो आज की तारीख में जो शिक्षा के क्षेत्र में स्खलन हुआ है वो इतिहास में यहां से आरंभ हुआ कि जो ब्राह्मणों के अंदर गुणों के आधार पर जो योग्यता निर्धारित होनी थी वो समय के साथ जन्म के आधार पर होने लगा। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब 500 वर्ष पूर्व आए वो कलयुग के इस धारा को कुछ परिवर्तित करना चाहते थे, और इसीलिए महाप्रभु के विषय में अंत में वर्णन किया है, सन्यासी पंडित गणेर कोरिते गर्वनाश, नीच शूद्र द्वारा कोरे धर्मेर प्रकाश। महाप्रभु विशेष रूप से उन लोगों को नम्र बनाना चाहते थे जिनको लगता था कि केवल अपने जन्म और भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, महाप्रभु ने कहा भक्ति को प्राप्त करना हो तो यह भक्ति का ज्ञान जगत के हर व्यक्ति के लिए सुलभ है, उसके आध्यात्मिक योग्यता के ऊपर आधारित है, भौतिक योग्यता के ऊपर नहीं। तो जब रामानंद राय महाप्रभु के पास जाते हैं तो महाप्रभु के सामने जाकर करबद्ध निवेदन करते हैं, आमानिस्तारिते तोमार इह आगमन, परम दयालु तुमी पतित पावन। प्रभो, आप हमारा उद्धार करने आए हो, आप पतितों के पावन हो। पतित कौन है? अगले श्लोक में कहते हैं, वेद निष्ठा मध्य अर्धेक वेद मुखे माने वेद निषिद्ध पाप कोरे धर्म नहीं गुणे। पतित कौन है जो जानता है क्या उचित है क्या अनुचित, फिर भी शास्त्रों के आधार पर उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं पाते, तो इसलिए उनको कहा गया है पतित। एक प्रोग्राम में मैं कीर्तन कर रहा था, सामने एक सज्जन बैठे थे, सब कीर्तन में ताली बजा रहे थे, मैं कह रहा था आप भी बजाओ, लेकिन वो बुल लज्जा कर रहा था। प्रोग्राम हुआ, प्रसाद हुआ, प्रसाद के बाद मैं जब जा रहा था तो देखा वो कोने में वही व्यक्ति हाथ में तंबाकू लिए जोर जोर से ताली बजा रहा था। मैंने कहा कीर्तन में तो बड़ी लज्जा आ रही थी आपको, जैसे ही तंबाकू आ गया उत्साह का पूरा फव्वारा उड़ गया, इतना उत्साह। तो कहता ये तंबाकू नहीं है, मैंने कहा ये तंबाकू नहीं तो क्या है, वो बोलता संजीवनी बूटी है। मैंने कहा ये किसने कहा, बोले मेरे दादाजी मुझे रामायण सुनाते थे, उस समय खाते थे, तो मैं उनको पूछा तो बोले इसी को सूंघकर तो लक्ष्मण जाग गए। तो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि इंद्र तृप्ति तो है ही, लेकिन उसके पीछे शास्त्रिक परपोट भी लोग देते। तो इसलिए कहा गया है रैशनलाइजेशन इज यूज ऑफ इंटेलिजेंस इन सर्विस ऑफ फॉल्स ईगो। बुद्धि का प्रयोग जब हम अहंकार की सेवा में लगाएं तो यह विपरीत हो जाता है। तो इसलिए जब हम शास्त्र से हटकर अहंकार से प्रेरित, अगर गुण हो न हो फिर भी अगर योग्यता की कामना करें तो फिर समस्या आरंभ हो जाती है, और यहीं से समस्याएं भारत में आरंभ हो गई। महंत स्वभाव ए तारीते पामर निज कार्य नहीं तबो जाता रघर। कहते हैं महंतों का स्वभाव क्या है, निज कार्य नहीं होने पर भी वो पतितों का उद्धार करने हर जगह भ्रमण करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में भ्रमण किए, और भ्रमण करके पाश्चात्य देश के भक्तों को लेकर भारत में आए, और भारत में कई लोग उनसे प्रश्न पूछते थे कि इनके अंदर तो योग्यता नहीं भक्ति करने की। तो प्रभुपाद यही कहते थे कि भाई वास्तविक भक्ति क्या है, जो कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखे, कृष्ण की सेवा में जो तत्पर हो, वो भक्ति करने के लिए योग्य है। जयपुर में प्रभुपाद जी के लिए दो अमेरिकी शिष्याओं ने मिलकर बड़ा सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया। प्रोग्राम होने के पश्चात श्रील प्रभुपाद जी बैठे थे, वो दो बेचारी शिष्याएं बैठी थी और कई दूसरे लोग आकर बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको परिचय कराया कि देखिए कैलिफोर्निया से आए हुए ये लोग दो लड़कियां हैं, इन्होंने कितना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। तो वहां पर एक सज्जन सेठ जी बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी इन्होंने प्रोग्राम वोग्राम तो किया, लेकिन कीर्तन वीर्तन कर लेते हैं, गा तो लेते हैं, नाच लेते हैं, लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है इनके अंदर। प्रभुपाद ने कहा क्या बात करते हो, ये लोग तो पूरा उपनिषद जानते हैं। अब वो माताजी केवल 5 श्लोक जानती थी इस उपनिषद का। अब प्रभुपाद जी ने तुरंत माताजी को देख के कहा सुनाओ इनको पूरा उपनिषद सुनाओ। अब वो डर डर के पहला श्लोक दूसरा श्लोक, जब तक चौथे श्लोक पे आए उसका हृदय गदगद करने लगा आगे क्या होगा। 5वां श्लोक जैसे ही सुनाया प्रभुपाद ने कहा बस इसका मतलब तुमको सब पता है। तो वो सज्जन बोलते प्रभुपाद को स्वामी जी श्लोक तो सुनाए इन्होंने लेकिन संस्कृत का प्रोनंसिएशन ठीक नहीं था। प्रभुपाद ने कहा लेकिन कृष्ण के प्रति रिनंसिएशन कितना जोरदार है। दुई भाई भक्त राजा कृष्ण कृपा पात्र व्यवहारे राज मंत्री हुए राज पात्र। रूप और सनातन नवाब हुसैन शाह की सेवा में थे, एक प्रधानमंत्री एक वित्त मंत्री। व्यावहारिक रूप से राज मंत्री थे, लेकिन ऐसे परिवेश में भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे थे। और इसलिए भले वो ऐसी अवस्था में थे, लेकिन भक्ति के कार्य पूर्णतः कर रहे थे। विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीण तब आपना क मने तृण होते हीन। विद्या भक्ति बुद्धि बल में प्रवीण होते हुए भी उनकी सबसे बड़ी योग्यता क्या थी? अपना के माने तृण होते हीन, अपने आप को तृण से भी अधिक नम्र मानते थे। और ये भक्त की वास्तविक योग्यता है, चाहे वो सामाजिक रूप से औपचारिकता के लिए किसी भी अवस्था में क्यों न हो। और तब कहते हैं, तार दैन्य देखी सुनी पाशन बिदारे अमितुष्ट हो या कहिलो दोहारे। तो कहते हैं उनके दीनता को देखकर बड़े बड़े चट्टान भी पिघल गए, और महाप्रभु उनके इस दीनवश अवस्था को देखकर, विनम्रता को देखकर कहते हैं, उत्तम होया ही न करी मानह अपना रे अचिरे करीबे कृष्ण कोहिलो दोहारे। तो कहते हैं कि बड़ा शीघ्र भगवान श्री कृष्ण आपका उद्धार करेंगे, क्योंकि आपके अंदर यह गुण है कि आप उत्तम हो लेकिन अपने आप को नम्र मानते हो। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन को हमारे संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य घोषित किया, क्योंकि उनके अंदर ये सद्गुण थे। और जिसके अंदर ये गुण हो वो वास्तव में वैदिक सभ्यता और संस्कृति का प्रतिपादन कर सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, और वहां जाकर उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को भी कृष्ण भक्ति से जोड़ दिया। उस समय जब लोगों को लगा कि यह संभव नहीं, हां उनका मन विचलित था, उनका मन चंचल था, कई समस्याएं आई, लेकिन प्रभुपाद जी ने विश्व भर में कई बार भ्रमण करके अपने जीवन काल में 108 मंदिर खड़े कर दिए, और आज इस्कॉन के पूरे विश्व भर में 700 के ऊपर मंदिर हैं, भारत में ही 200 के ऊपर मंदिर है। प्रभुपाद लंदन पहुंचे तो एक पत्रकार ने प्रभुपाद जी को चुनौतीपूर्ण स्वर में पूछा कि आप लंदन क्यों आए हो? अब प्रभुपाद ने कहा, अंग्रेजों ने 300 वर्षों में भारत की लूटपाट मचाई, हीरा मोती सोना चांदी लूट के ले गए, लेकिन भारत का अनमोल रत्न भगवत गीता चुराना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आए। और पिछले 50 वर्षों में इस्कॉन ने पूरे विश्व भर में 50 करोड़ भगवत गीता का वितरण किया है, और उसका सबसे बड़ा परसेंटेज तो दिल्ली में हुआ है। तो आप सभी के प्रेरणा से ये संपूर्ण विश्व में प्रभुपाद जी जो गीता का वितरण करवाए, अब विश्व के कोने कोने में ये बढ़ता चला जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलस में इस्कॉन का वेस्टर्न वर्ल्ड हेडक्वार्टर स्थापित किया, जिसका नाम था रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर, इस्कॉन ऑफ न्यू द्वारका। आज आप जाओगे तो पूरा गली, पूरा लेन, उसके दोनों तरफ की बिल्डिंग इस्कॉन ने खरीद ली है।
वो लेन का नाम है वाटसिका एवेन्यू, वाटसिका एवेन्यू नाम है लेन का जो रोड है, और लगभग 1968-69 में जब स्टार्ट हुआ तब वहां के लोगों को पता भी नहीं था कि व्हाट इज शिखा, वाटसिका एवेन्यू को लोगों को समझाया कि व्हाट इज शिखा, अब वहां पर जितने लोग देखोगे केवल शिखा के साथ ही मिलेंगे। तो वहां पर एक पुजारी थे, पूजा कर रहे थे, चार पांच साल के बाद मन विचलित होने लगा, और कभी कभी सेवा करते करते लगता है कि शायद बहुत ज्यादा सेवा हो गई, तो उसको लगा कि बहुत ज्यादा सेवा कर गए, पहले जो हम समुद्र में जाके सर्फिंग करते थे उसको मिस कर रहे हैं। मन है तो मन बीच बीच में यहां वहां बंदर की तरह उछाल मारता है। तो फिर वो मंदिर से निकल गए, सर्फिंग बोर्ड लिया, समुद्र में गए और समुद्र में तैरने लगे सर्फ बोर्ड के साथ। सर्फिंग कर रहे थे, शार्क मछली आ गई, और उसने सोचा इतने वर्ष इस्कॉन में आने से पहले सर्फिंग किया, कभी शार्क का दर्शन नहीं हुआ। मंदिर से निकला सेवा छोड़ के, जिस दिन गया पहले ही दिन शार्क आ गया। कैसे? क्योंकि कृष्ण भी बराबर फॉलोअप करते हैं, एक बार उनके साथ जुड़ गए तो केवल इस जीवन में नहीं आगे के कई जीवन में पीछा करते रहेंगे। तो जैसे ही शार्क को अपनी ओर आते हुए देखा तुरंत नरसिंह आरती बोलना स्टार्ट किया, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में चार साल थे, जानते थे इमरजेंसी में कौन सा बटन दबाना है। लेकिन वो शार्क और निकट आने लगे, फिर बाकी जितना मंत्र तंत्र था सब बोल डाला, शार्क फिर भी आता रहा। फिर अंत में वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, आज ये शार्क से पिंड छुड़ाओ, मैं आपको आश्वासन देता हूं सीधा आपकी सेवा करूंगा जीवन भर, और कुछ नहीं करूंगा। शार्क भी निकट आया, उसको देखा, बोला चलो फास्टिंग करेंगे आज, छोड़ के निकल गया। मंदिर में प्रेसिडेंट ने पूछा कहां गया था, तो बोला मैं तो इधर ही था। बोला नहीं 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 था, तू कहीं गया था, तो बोला जहां भी गया था अब कहीं नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मन बड़ा ही चंचल है। नायम जनों में सुख दुख है तो न देवतात्मा गृह कर्म काल, मन परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत्य। 11वें स्कंद भागवत में अवंती ब्राह्मण कहते हैं, प्रभो मेरे जीवन में समस्या का कारण ये व्यक्ति वो व्यक्ति ये व्यक्ति नहीं है, न देवता न ग्रह न कर्म न काल, ये सब मन हमें बेवकूफ बनाता है। मन परम कारण मां मनंती, हमारे जीवन की समस्या के पीछे एक ही कारण है, हमारा अनियंत्रित मन। और ये अनियंत्रित मन संस्कार के चक्र में हमें घुमाता रहता है, और इसलिए हमें चाहिए कि हम ये न केन प्रकारे न इस मन को नियंत्रित करें। विश्व के अलग अलग देश अलग अलग कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन प्राचीन काल से अब तक भारत पूरे विश्व में सबसे तीव्र गति से चलता हुआ मन, इसको किस तरह नियंत्रित करे, इस सिद्धि के लिए प्रसिद्ध रहा है विभिन्न प्रकार के योग पद्धतियों के माध्यम से। और इस ज्ञान को शिला प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में लेके गए और इसको विश्व प्रसिद्ध किया। तो भारत अब पूरे विश्व में इस्कॉन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, और अब कई संस्थाएं पूरे विश्व भर में इस ज्ञान को लेकर भ्रमण कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेज वन ब्राह्मणों की जो परिभाषा थी, गुण ज्ञान अधिकार के आधार पर, वो जन्म के आधार पर होने के कारण शनै शनै बातें बिगड़ने लगी। दूसरा स्टेज टू, जैसे आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र वज्रनाभ, पौत्र वज्रनाभ ने मथुरा वृंदावन का पुनर्निर्माण किया। महमूद गजनी का आक्रमण हुआ और तारे सारे जितने भी मंदिर थे वो सब विध्वंस हुए। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में प्रकट हुए तब लगभग वृंदावन ब्रजभूमि कृष्ण की भूमि का कृष्ण के साथ कोई संबंध है लोग भूल चुके थे। श्री चैतन्य महाप्रभु 1510 में संन्यास लिए, 1534 में लीला समाप्त की, 1525 में बाबर भारत में प्रकट हुए। फिर 1556 से जब अकबर आगरा में सत्ता जमाए, अकबर राजपूत और गोस्वामी गण के गठबंधन से वृंदावन का पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। और हम देखते हैं कि मुगलों के प्रभाव से लोगों की आदतें, लोगों के विचार इत्यादि परिवर्तित होने लगे और शनै शनै ये दूसरा स्टेज था जब मुगल प्रभाव से धीरे धीरे पूरे भारत पर प्रभाव पड़ने लगा। लेकिन हमारे गौड़ी आचार्य इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान थे कि शिला जीव गोस्वामी पाद ने अकबर के ऊपर इतना प्रभाव किया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बांग्लादेश में तपन मिश्रा का उद्धार किया, तपन मिश्रा को वाराणसी भेजा। तपन मिश्रा राजपूत घराने के राजाओं के राजगुरु बने। तपन मिश्रा के पुत्र का नाम था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य बने तोड़ारमल और मानसिंह, और उन लोगों ने सहयोग दिया जिससे कि जीव गोस्वामी पाद ने अकबर को आश्वासन दिलाकर, अकबर ने राधा गोविंद और राधा मदन मोहन भगवान के नाम पर वृंदावन में जमीन के लिए फरमान नियुक्त किया। और यह प्रथम बार था कि डीटीस के नाम पर वृंदावन में लैंड ग्रांट हुआ। और उसके पश्चात धीरे धीरे जितना हो सकता गठबंधन किया, लेकिन भारत के अन्य स्थानों में इतना धर्म का परिवर्तन नहीं हो पाया जिस प्रकार गोस्वामी ने वृंदावन में इस प्रचार को मुगलों की सहायता से किया, लेकिन अन्य स्थानों पर इस प्रकार नहीं हो पाया। और इसलिए हम देखते हैं कि लगभग 1857 तक जब मुगल रूल कायम था, धीरे धीरे आक्रमण के कारण और धर्म परिवर्तन के कारण कई समस्याएं आती चली गईं और कई सारे शास्त्र इत्यादि लुप्त होते चले गए। फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के अपने अलग अलग दूसरे प्रभाव प्रकट हुए। उनको कहा गया है इंडोलॉजिस्ट। अलेक्जेंडर डफ जो स्कॉटिश कॉलेज को निर्धारित किए, स्थापित किए, विलियम जोन्स भारत के 16 भाषा सीखे, इस बात को सिद्ध करने की हम लोग बेवकूफ हैं। और विल्सन हजारों पाउंड खर्च करके भी वो बोले कि हजारों पाउंड में खर्च करने के लिए तैयार हूं उस व्यक्ति को पुरस्कार देने के लिए जो हिंदू धर्म का विरोध कर सके। और फिर मैक्स म्यूलर, वो भी बहुत बड़े स्कॉलर थे। फिर मैकॉले ने आया और उन्होंने देखा कि जब तक भारत की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम लोग राज नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कुछ भारतीयों को उनके संस्कृति से अलग करना है। जितने गांव गांव में धर्म और वैदिक सभ्यता और संस्कृति से उनके अपनी शिक्षा प्रणाली है उसको विध्वंस करना है। और इस दृष्टिकोण से उन्होंने कुछ बाबू लोगों को तैयार करने के लिए नया एजुकेशन सिस्टम बनाया। और वहां से आरंभ हुआ कि अंग्रेजी के प्रति लत, और उसके कारण हम देखते हैं कि आज भारत में 27 करोड़ लोग 15 लाख स्कूलों में हैं, 3 करोड़ छात्र अलग अलग 56,000 कॉलेजों में हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी चरित्र निर्माण पर कोई बल नहीं। प्रतिदिन 2000 करोड़ का ड्रग्स भारत के अंदर आता है, पूरे विश्व भर में 1 बिलियन सिगरेट स्मोकर्स के एडिक्ट हैं, प्रतिदिन 18 बिलियन सिगरेट फूके जाते हैं, साल के 6.75 ट्रिलियन सिगरेट लोग फूक फूक कर मरते जा रहे हैं, हर प्रकार के मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं लेकिन अपने मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने की कोई क्षमता और शक्ति नहीं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब भगवद गीता को लेके पाश्चात्य देशों में गए, ये एक बड़ा क्रांतिकारी विषय था। क्यों? क्योंकि आज लोगों को लगता है कि भारत पूरे विश्व को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दे रहा है। मैं जब अमेरिका के सिएटल में था तो वहां पे देखा कि अधिकतर लोग इंडियन ही दिख रहे हैं, और मैं सिएटल में लोगों को पूछने लगा, अरे ये तो बंबई दिखता है, इतने इंडियंस कैसे? बोले इंडियंस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की शक्ति बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि इतना अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम देखा है, बड़ा धीरज है, छोड़ते नहीं, लगे रहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ट्रेन में मैं जा रहा था, मेरे साथ न्यूयॉर्क का एक डिवोटी बैठा था, सामने दो सज्जन बैठे थे, ऊपर का फैन नहीं चल रहा था ट्रेन का पंखा, तो सामने वाले ने अपनी कंघी निकाली और कंघी को लेके फैन घुमाने लगा, क्योंकि अपने पास तो कंघी होती नहीं, तो कंघी घुमाया, दूसरे ने फैन को स्विच ऑन ऑफ किया, पंखा चलने लगा, न्यूयॉर्क का डिवोटी अपना कैमरा निकाल के बोलता, अरे जबरदस्त है, इसका तो फोटो लेना पड़ेगा, ये है क्या? मैंने कहा दिस इज ट्रेडिशनल इंडियन टेक्नोलॉजी, किसी मैनुअल में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सब जानते करना क्या है। तो प्रभुपाद जी जब कलकत्ता में थे गृहस्थ के रूप में, प्रभुपाद जी के हृदय में यह कृष्ण भक्ति का ज्ञान देश विदेश में पहुंचाने का उनके गुरु महाराज ने 1922 में दे दी, उल्टा डंगा जंक्शन पर जो बिल्डिंग थी वहां पर। अब प्रभुपाद और महाप्रभु की कृपा से 3 महीने पहले वो उल्टा डंगा जंक्शन वाला बिल्डिंग इस्कॉन के पास आ गया है। जैसे मैंने सुना, यहां पर दिल्ली के भक्तों ने मिलकर छिपीवाड़ा में प्रभुपाद जी ने जो स्थान पर रहे थे वहां पर बड़ा भव्य मंदिर तैयार कर दिया, तो आशा है कि अगले 1-2 साल में उल्टा डंगा में भी जबरदस्त मंदिर खड़ा हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी रहते थे सीताकांत बैनर्जी लेन के अपने घर पर, ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर का भी उनका ही घर था, लेकिन वो उन्होंने गौड़ीय मठ के ब्रह्मचारियों को दिया था वहां पर शास्त्र का अध्ययन करने। तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे जिनका नाम था डोल गोविंद शास्त्री, संस्कृत के बड़े विद्वान थे और संस्कृत का ज्ञान दे रहे थे गौड़ीय मठ के ब्रह्मचारियों को। प्रभुपाद जी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में जो स्टेयरकेस था उस पे आके बैठ गए, जप कर रहे हैं। डोल गोविंद शास्त्री बाहर निकले, प्रभुपाद जी के बगल में आए बैठे, बोले मैंने अभी अभी लेक्चर दिया, पृथ्वी ते आचे जो तो रघुनाथ ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए भी मोर नाम, देश विदेश में प्रचार होगा, महाप्रभु ने कहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे। तो प्रभुपाद जी गृहस्थ थे लेकिन इतना आत्मविश्वास था, उठे, 2 कदम नीचे उतरे, डोल गोविंद शास्त्री को देखकर बोले, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की, एक दिन यह अवश्य होगा। फिर प्रभुपाद 2 कदम नीचे उतरे, फिर मुड़े, डोल गोविंद शास्त्री को देखकर बोले, भविष्य में कोई मूर्ख शिष्य जो सरस्वती ठाकुर के चरणों में समर्पित है इस कार्य को सिद्ध करेगा। फिर प्रभुपाद 2 कदम नीचे उतरे, डोल गोविंद शास्त्री भी सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, वो सोचने लगे कहीं मैं तो नहीं वो। प्रभुपाद नीचे उतरकर फिर मुड़े ढोल गोविंद शास्त्री को देखकर बोले, और वो व्यक्ति आप नहीं होंगे। और ढोल गोविंद शास्त्री सोचने लगा, अरे इनको क्या लगता है वो करने वाले हैं क्या? अभय बाबू कैसे कर सकते हैं, वो तो गृहस्थ हैं, व्यवसायी हैं, दिन रात केवल पैसा 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 सोचते रहते हैं, ये कैसे करेंगे? इसीलिए उस समय गौड़ीय मठ के कांग्रीगेशन में श्रीला प्रभुपाद के विषय में लोगों के मन में यही धारणा थी, ये व्यक्ति तो दिन रात केवल धंधे की सोचता है। लेकिन उनको पता नहीं था कि भविष्य में प्रभुपाद जी धंधे से कलयुग के अंधों को ज्ञान देने पहुंच जाएंगे अमेरिका, और कैसे विश्व में क्रांति मचाएंगे, ये शिला प्रभुपाद की योगदान थी। तो प्रभुपाद जी ने एक बार लंदन बंबई में प्रभुपाद जी थे, कुछ भक्त लोग उनके आसपास थे, प्रभुपाद जी ने कहा कि बताइए जो कई हमारे यहां पर लोग हुए हैं और मैंने अपना कार्य किया है, उनकी तुलना में मेरे कार्य को क्या बताओगे? तो कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि तुलना से संबंधित कोई भी प्रश्न होता है तो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखो अवश्य इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजों को भारत से भगाया गया, लेकिन अभी मैंने उनको अपनी सेवा में लगाया है, सनातन धर्म की सेवा में लगाया। फिर प्रभुपाद मुड़े, देखे एक ब्रिटिश ब्रह्मचारी चामर ढुला रहा था, और प्रभुपाद ने कहा, देखो मैं उसको पगार भी नहीं दे रहा, फिर भी वो लगा हुआ है। और लोग कहते हैं कि इंडिया इज पुअर कंट्री, इफ इंडिया इज पुअर कंट्री आई एम पुअर मैन, ये पुअर मैन के पीछे क्यों लगा हुआ है? ये इस बात का प्रमाण है कि इतने लोग लगे हुए हैं क्योंकि भारत पूरे विश्व का सबसे धनवान राष्ट्र है वैदिक ज्ञान के रूप में, और यह ज्ञान हम सभी को अपने जीवन में उतारना है, अर्जित करना है और वितरित करना है। और इसलिए शिला प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में भ्रमण करते हुए हमसे यही आग्रह किए, ये न के न प्रकारे न आप लोगों को ये ज्ञान दो। कोई होटल में जाता है तो जानता है कि वहां क्या वितरित होता है, भोजन। दवाई की दुकान में जाते हो आप जानते हो वहां क्या वितरित होता है, औषधि। आप किसी कपड़े के दुकान में जाते हो वहां क्या वितरित होता है, कपड़ा। आप सत्संग में इस्कॉन मंदिर में आते हो यहां क्या वितरित होता है, आशा। और यहां आशा के सागर में डुबकी लगाकर दो बूंद लेने के लिए हर रविवार को आप लोग आते हो, और इसलिए ये आशा को वितरित करना कि हर प्रकार के विपरीत परिस्थिति में भी चाहे मैं धन खो जाऊं, अपने मान सम्मान को खो दूं, संपत्ति को खो दूं, चाहे कुछ भी खो दूं, लेकिन अपने जीवन में आशा नहीं खोएंगे। इस संदेश को लेकर श्रीला प्रभुपाद जी गीता और भागवत के ज्ञान को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किए। वसुदेव जी के 6 पुत्र का नाश हुआ, फिर भी वसुदेव जी निराश नहीं हुए। उनके पुत्र नष्ट हुए, लेकिन वसुदेव जी के हृदय की इच्छा और आशा नष्ट नहीं हुई। और इसीलिए यह गीता और भागवत का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी के महोत्सव में धूमधाम से जब हम लोगों को आमंत्रित करते हैं अपने मंदिरों में, इस बात को भूल जाते हैं कि उस जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में प्रकट करने से पूर्व वसुदेव जी को कितना कष्ट सहन करना पड़ा और कितना दर्द सहन करना पड़ा, और वो दर्द सहन करने के बाद ही कृष्ण प्रकट होते हैं। इसलिए इस जगत में कण कण में, अणु अणु में खौफनाक दर्द सन्निहित है, लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य दर्द से मुक्त होना नहीं, इस दर्द के सागर में गोते लगाते हुए कृष्ण का स्मरण कैसे करना है, ये इस्कॉन आपको सिखाता है। आईआईटी में मैं लेक्चर दे रहा था जन्माष्टमी का, उसके बाद एक स्टूडेंट मेरे पास आके बोलता है कि अरे आपने वसुदेव और देवकी का बताया, आकाशवाणी हुई थी कि आठवां पुत्र मृत्यु का कारण बनेगा कंस का, तो कंस को तो वसुदेव को एक जेल में डालना था, देवकी को दूसरे जेल में डालते, एक भी पुत्र नहीं होता। इतना सिंपल से आइडिया भी उसको चमका नहीं किया। मैंने कहा क्या करे, कंस आईआईटी नहीं गया था। लेकिन जन्माष्टमी के पीछे संदेश बड़ा गहरा है, और वो ये क्या, हर परिस्थिति में प्रेम का अर्थ आनंद नहीं, दर्द को सहन करके निष्काम सेवा भाव व्यक्त करना। प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार, निज दुख बिघ्ना दिर नो करे विचार, बहु परिश्रम चंदन रेमुना आनिला, आनंद बढ़िला मने दुख न गणिला। प्रेम का अर्थ ही है निस्वार्थ सेवा भाव हम किस प्रकार व्यक्त करें, और इस बात को लेकर श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में भ्रमण किए, इस्कॉन के केंद्र इसलिए स्थापित किए जिससे अपने 24 घंटे में अपने दैनिक जीवन में जूझता हुआ व्यक्ति हर प्रकार के सफलता और विफलता को अनुभव करता हुआ जब हतोत्साहित हो जाए, उत्साह क्षीण हो जाए, उसका मनोबल आत्मविश्वास खो बैठे, वो यहां पर इस्कॉन के मंदिर में आके कथा कीर्तन सुनकर शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके पुनरुत्साह प्राप्त करके फिर अपने जीवन के युद्ध में युद्ध कर सके कृष्ण का स्मरण करते हुए। चौथा, वैदिक सभ्यता और संस्कृति के ऊपर आक्रमण हुआ। भारत में ब्रिटिश सरकार जाने के पश्चात भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो, उठा के फेंक दो, अलग परपोट निकाला। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर भारत में धर्म से संबंधित कोई भी ज्ञान कोई भी स्कूल कॉलेज में प्राप्त करने जाओ नहीं प्राप्त कर सकते, बोलेंगे ये रिलीजियस यहां नहीं चलेगा। और इसलिए भारत में एक दृष्टि से देखा जाए कोई भी नास्तिक नहीं है, बड़ा मुश्किल है मिलना, मिल ही नहीं सकते, क्योंकि सबके रगों में स्वाभाविक रूप से धर्म के प्रति आकर्षण है। आधे से ज्यादा लोगों के नाम ही कृष्ण राम इत्यादि से जुड़े हुए हैं। चौपाटी मंदिर के बगल में एक होटल है सुदामा पैलेस बियर बार, वहां भी जाओ तो भूल नहीं सकते, बीड़ी फूकने जाओ तो गणेश बीड़ी मिलता है, कहीं पर भी जाओ कुछ भी करने का प्रयास करो आप यहां धर्म को नहीं भूल सकते। एक बार मैं पुजारी की सेवा कर रहा था 90s में, एक जवान लड़का आया मुझे बोला ये बैग के अंदर जो है ऑफर करो, मैंने अंदर देखा बॉक्सिंग का ग्लव्स था, मैंने कहा पागल हो गए क्या, भगवान को बॉक्सिंग ग्लव्स ऑफर करते हैं क्या। वो बोला अरे मैं आप लोगों का गीता कोर्स अटेंड किया, बोले जो कुछ भी नया लो भगवान को ऑफर करो मैं फॉलो कर रहा हूं, आप तो पुजारी हो इतना क्या प्रश्न पूछते हो, ऑफर करो। तो मैंने ऑफर कर दिया, बाद में उसको दिया, बोला आप क्या करोगे, ऑफर तो हो गया इसका बॉक्सिंग ग्लोव का करोगे क्या। वो बोलता जिसको भी मारूंगा उसको कृष्ण का प्रसाद मिलेगा। तो हम लोगों का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि भारत के किसी भी शहर से 2 घंटे के अंदर आप कोई तीर्थ स्थान पहुंच जाओगे। यहां तक कि बंबई में हमारे चौपाटी मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम है बाण गंगा, जहां पर रामचंद्र जी ने बाण लगाया और वहां से गंगा को प्रकट किया। सीता देवी ने वहां पर शिवलिंग की पूजा की। सोचिए बंबई में। तो इसलिए भारत के कोने कोने में जाओ तो आपको लगेगा हमारे देश का सबसे बड़ा डीएनए क्या है, धर्म। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति कम उम्र से अपने शिक्षा प्रणाली में उसको पढ़ने का प्रयास करे, उसके लिए कोई अवसर नहीं। और इसलिए कम से कम श्रीला प्रभुपाद की कृपा से पिछले 25 वर्षों में इस्कॉन यूथ फोरम ने पूरे भारत भर में हजारों युवाओं को कृष्ण भक्ति से जोड़ दिया है। तो इसलिए स्टेज 5 चीप अप्रोच टू रिलीजन, उसमें से भी जो सेकुलर को छोड़कर जो धर्म के प्रति आकर्षण व्यक्त करते हैं, या तो वो अलग अलग प्रकार से कपोल कल्पित भाव में निकल जाते हैं या फिर निर्विशेषवाद की ओर आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रणाली नहीं है, देयर इज नो सिस्टम। जिसको जो अच्छा लगे वही करने लगता है। सो प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डिविएशन इज वेरी हाई, मेजॉरिटी बिकम इम्पर्सनलिस्ट, अधिकांश निर्विशेषवादी बन जाते हैं। तो ये चीप अप्रोच टू रिलीजन ये बड़ा खतरनाक है। और अधिकांश लोग आते हैं, चलो प्रभु अपना कुछ काम करा दो, जैसे कोई दफ्तर में गए किसी से कुछ काम कराने वैसे ही आ जाते हैं। अपने कॉलेज में लड़का बड़ा प्रचार करता था, इतना प्रचार करता था मैं उसको बोलता था अरे पढ़ाई भी किया कर, बोला अरे वो है ना देख लेंगे। एग्जाम के एक दिन पहले आके प्रार्थना किए जा रहा है, मैंने कहा इतनी देर प्रार्थना कर रहा है, कह क्या रहा है? वो कहता है मैं भगवान को कह रहा हूं कि देखो आपका मैं कैंपस में इतना प्रचार करता हूं, अब उस कैंपस का प्रचार का भविष्य आपके हाथ में है। कल एग्जाम में फेल हो गया, लोग इस्कॉन में नहीं आएंगे, देख लो बेट आप ही देख लो। तो बड़ा जबरदस्त नेगोशिएट किया। अगले दिन एग्जाम था और 1 महीने के बाद जब रिजल्ट आया मालूम पड़ा पास हो गया। जिस दिन रिजल्ट आया मैं जब गया प्रोग्राम में, यूजुअली 8-10 लोग आते थे, उस दिन 50 लोग आ गए। मैंने कहा इतने लोग कैसे? वो बोले अगर ये व्यक्ति पास हो सकता है मतलब कृष्णा का अस्तित्व है। स्टूडेंट्स इससे इतना इंस्पायर ना हो, आप लोग पढ़ाई अवश्य करो। लेकिन अधिकांश लोग जो धर्म निरपेक्षता को छोड़कर भी धर्म से जुड़ते हैं, वो केवल इस धारणा से अपना कुछ काम निकल जाए, व्यवसाय वृत्ति से। और फिर 6ठा स्टेज आता है कि इतना सब होने के बाद भी क्योंकि धर्म के प्रति उचित शिक्षा नहीं, हम लोग पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का अनुगमन करने लगते हैं, इमिटेटिंग द वेस्ट। क्योंकि वहां पर हर प्रकार से ऐश्वर्य है, धन है, और जैसे इंटरनेट का बोलबाला बढ़ा, अधिक से अधिक पाश्चात्य देश के विचार भारत में प्रचलित हैं। और चाहे यहां पर वो लागू हो न हो, लेकिन हर एक व्यक्ति उससे जुड़ना चाहता है, इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। और आज शिक्षा प्रणाली में 1st स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड के आगे लगभग 88% लोग निकल जाते हैं, केवल 12% लोग आगे जाते हैं। पूरे भारत में केवल 8% 8% लोग ही अंग्रेजी समझते हैं, बोलते हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे मैक्सिमम सारे सरकार वेबसाइट ये वो सब इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो इसलिए एक दृष्टि से अच्छा है प्रभुपाद जी वेस्ट के लोगों को लेके आए इंडिया में, जिससे कि भारत के लोग उनको देख के समझ सके कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के लोग भी गीता भागवत से जुड़ना चाहते जाए। क्या नाम है? श्री राधा राधिका रमन भगवान की। तो आज हम लोग के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है। भारत में इतना धर्म और इतना ज्ञान श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त हुआ। आज भारत की जनसंख्या 1200 मिलियन होने पर भी टूरिस्ट केवल 11 मिलियन आते हैं। इतने धार्मिक क्षेत्र हैं हमारे, स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिज्म कितना हो सकता है सोचिए। नॉर्दर्न आयरलैंड की जनसंख्या 1 मिलियन है लेकिन 4 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। तो इसलिए पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं भारत के धर्म के विषय में जानना चाहते हैं और इस क्षेत्र में इस्कॉन का बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम एक ऐसी संस्था है जो केवल भारत में नहीं विश्व के लगभग अधिकांश राष्ट्रों में उपस्थित हैं। और इसीलिए टू वे टूरिज्म दोनों में हम लोग सक्रिय होकर लोगों को आध्यात्म के साथ जोड़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इतना विशेष रूप से प्रचार किया, प्रयास किया। रूप और सनातन गोस्वामी अपने प्रयासों से वृंदावन का पुनर्निर्माण किए और जहां पर भी इस्कॉन के मंदिर बने वहां देखिए कैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ गया। आज वृंदावन में गली गली में आपको वेस्टर्न लोग दिखेंगे, मायापुर में आपको दिखेंगे, और 2022 में मायापुर में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर TOVP तैयार होगा। और इसीलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि यथाशक्ति यथासंभव जो कुछ भी हो हम लोग अपने जीवन में भक्ति को उतारें, और जो कुछ हमने अपने जीवन में भक्ति के माध्यम से सीखा स्वीकार किया उसको दूसरों में वितरित करें। बंबई के लोकल ट्रेन में मैं गीता बांट रहा था, ट्रेन में खचाखच भीड़ थी, आपको तो पता ही है बंबई में कैसी भीड़ होती है ट्रेन के अंदर। कुचला गया था मैं, दाई तरफ बाई तरफ दोनों तरफ एक एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया। मेरे कंधे पे गीता का पूरा बैग था, सामने एक व्यक्ति आ गया मुझे देखकर बोलता है हरे कृष्णा वाले हो क्या? मैंने कहा और किसका स्टाइल है ये? तो उसने कहा गीता मिलेगी क्या? मैंने कहा आप तो देख ही रहे हो हाथ नहीं हिला पा रहा हूं, हाथ डालो गीता ले लो। उसने हाथ डाला गीता लिया, बोला कितना? मैंने कहा 70 रुपए की है। 100 रुपए का नोट दिखाया, मैंने कहा जेब देखते हो डालो उसमें, 30 रुपए निकाल लो। तो 100 रुपए डाला, 30 रुपए निकाला, 70 रुपए में गीता बिक गई, हाथ भी हिलाया नहीं। उस दिन मैं समझ गया मैं करता नहीं हूं। तो करोड़ों लोग तैयार हैं गीता को स्वीकार करने के लिए, लेकिन हम लोग हिचकिचाते हैं। मैं एक व्यक्ति को लोकल ट्रेन के बाहर स्टेशन में आधा घंटा प्रीच कर रहा था, गीता ये है गीता वो है, वो मेरे को उठपटांग प्रश्न पूछे जा रहा था, 700 श्लोक पूरे हैं क्या? मैंने कहा यार आधे करके हम क्या कमाने वाले हैं क्या? फिर पूछता ओरिजिनल है क्या? तो मैंने कहा डुप्लीकेट क्यों लाएंगे, ये है क्या वो है क्या? पूछे जा रहा है और फिर लास्ट में बोलता है नहीं मेरे पिताजी ने पहले ली है। तो मैंने कहा आधा घंटा पहले ही इंफॉर्मेशन देता तो अच्छा होता। तो मैं हताश हो गया, लेकिन बिल्कुल उसके बगल में एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़े जा रहा था, उसका चेहरा भी मैंने देखा नहीं। ये पूरा कन्वर्सेशन सुना उसने, इसने रिजेक्ट किया, जैसे रिजेक्ट किया उसने 100 रुपए निकाला, गीता खरीद दिया, पेपर पढ़ने लगा। तो सुनाया मैंने प्रचार एक को, खरीदा दूसरे ने। तो इसलिए कौन व्यक्ति अपने जीवन के किस मोड़ पर है और कब वो आध्यात्म से जुड़ना चाहेगा, यह कह पाना कठिन है। लेकिन हम लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि अपना हम प्रयास करते रहें, वितरण करते रहें, और प्रचार में, नाम प्रचार के वितरण में भले कुछ कष्ट हो, लेकिन उसको सहन करना आवश्यक है, क्योंकि जितना हम प्रचार करेंगे भगवान की हम पर कृपा होगी। आज्ञा माला पाया हर्षे नमस्कार कुरी, आनंदे दक्षिण देशे चले गौर हरी। मत्त सिंह प्राय प्रभु कोरिला गमन, प्रेमा बेशे जाय कोरी नाम संकीर्तन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कष्ट करके पूरे दक्षिण भारत में और पूरे भारत में भ्रमण किए इस नाम प्रचार को आगे बढ़ाने। तो हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि अगर हम ये प्रचार करेंगे, भगवान गीता में कहते हैं मृत्यु के समय मेरा स्मरण करो, लेकिन जो व्यक्ति जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश को दूसरों में वितरित करेगा, नाम का प्रचार करेगा, गीता भागवत का वितरण करेगा, मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती उस व्यक्ति के मन में घुसकर उसे अपने धाम में लेके जाएंगे। जैसे आरंभ के परिचय में मुझे बता रहे थे कि मैं किचन में भी सेवा करता हूं, भोजन भी बनाता हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि भजन के बाद भोजन आवश्यक है। तो हमारे मंदिर में जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो लंबी लाइन लगती है प्रसाद की, तो लोग कभी कभी शंका में रहते हैं कि अपने को मिलेगा क्या। आप लोग चिंता मत करो, मिलेगा। और आपका यहां पर किचन इंचार्ज हमारी यात्रा में ट्रेन होके आता है, सुंदर कृष्ण प्रभु, तो बड़ा होनहार व्यक्ति है, काफी प्रयास करता है, और आप लोग भी एनकरेज करो जिससे किचन में लगा रहे। क्योंकि किचन से एग्जिट मारने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो लंबी लाइन में जब लोग परेशान रहते हैं, उससे ज्यादा घबराहट किसको होती है जो वितरण करता है प्रसाद। वितरण वाले को लगता है अरे इन लोग सब खाने के बाद मैं खाऊंगा, कुछ बचेगा क्या, कि केवल चम्मच के कीर्तन की आवाज सुनाई देगी। तो कभी कभी वो फ्यूचर प्लानिंग करके कम मात्रा में सब्जी बांटने लगता है, क्योंकि उसके पीछे विचार है अपने लिए बचा लो भाई। वो लाइन देखता है फिर नीचे देखता है, लाइन देखता है नीचे देखता है। तो लोग कहते हैं भैया कुछ तो करो, सब्जी बांट रहा चटनी की तरह। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही प्लेट बना के उसके बगल में रख देते हैं। वितरण करते करते उसके मन में शंका होती है, देख लेता है प्लेट, देख लेता है कि अगर मैं सेवा करता रहूंगा भविष्य उज्जवल है। तो इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक बार आत्मविश्वास जागता है तो फिर इतने उत्साह के साथ डबल सर्विंग करने लगता है। और जिनके प्लेट पर इतना प्रसाद गिरता है वो कहते हैं यार अपने लिए भी बचा ले थोड़ा, और वो कहते हैं अरे वैष्णव सेवा ही तो धर्म है। तो इसलिए भले प्रचार में कोई चुनौती दे, समस्या आए, परेशानी हो, लोग हर प्रकार से ऊटपटांग प्रश्न करें, भक्ति करने में कोई समस्या आ जाए, शरीर शिथिल पड़ जाए, कोई कलह हो जाए, लेकिन इस बात को भूलना मत, मृत्यु तो सभी के जीवन में आनी है, लेकिन कृष्ण का स्मरण करते हुए कृष्ण के मिशन को आगे बढ़ाने के कर्मठ प्रयास के साथ जिसने अपने रगों में सांस भरी है, उसके जीवन के अंत में भगवान कहेंगे, तुमने जीवन काल में मुझे अपने घर में बुलाया, मृत्यु के बाद मैं तुझे अपने घर में ले चलूंगा। तो इसलिए भगवान भी पार्टनरशिप में विश्वास रखते हैं, कहेंगे कि आपने अपने दिन में समय नहीं दिया, घर में जगह नहीं दिया, और सोचते हो कि मैं आपको इनवाइट करूंगा क्या। तो इसलिए इस्कॉन जो कार्य किया है यह बड़ा क्रांतिकारी कार्य है। 1977 में प्रभुपाद जी के लगभग 20-30 ही भारतीय शिष्य थे और 5000 के ऊपर अमरीकी शिष्य थे। अमरीकी मतलब पाश्चात्य देश के। किसी ने कल्पना नहीं की कि भारत में प्रचार इतना बढ़ेगा। और 80s में देखो तो वेस्ट में प्रचार बढ़ता जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम एक आया, वहां पे कई लीडर्स फॉलो करते करते उनके जीवन में समस्या आ गई और वो इन नियमों को पालन नहीं कर पाए, लोगों की श्रद्धा टूटी और फिर कई हजारों की संख्या में लोग इस्कॉन को छोड़ के चले गए। इसके ठीक विपरीत भारत में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज, भक्तिचारू स्वामी महाराज, राधानाथ महाराज, लोकनाथ महाराज, भानु महाराज, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज और बाकी कई कई लीडर्स जो भारत में लगे रहे, वो लोगों ने स्टेडीली अपने निजी जीवन में भक्ति का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया और धीरे 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 करके स्लो बट स्टेडी भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो भारत में पिछले 40 वर्षों में इस्कॉन इतना क्रांतिकारी रूप लिया है कि आज केवल एक दिल्ली का ही उदाहरण लो तो गोपाल कृष्ण महाराज की प्रेरणा से अभी आप लोगों के यहां पर 15-16-17 पता नहीं कितने सेंटर हो गए, जो कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इसलिए आज पूरे इस्कॉन में देखा जाए तो लगभग 70% ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेस इंडिया में है। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है? सबसे बड़ी लीडरशिप स्ट्रेटजी है सेट द राइट एग्जाम्पल एंड बी स्टडी। और कोई व्यक्ति स्टडीली सेवा करता रहे तो वो अपने आप में प्रेरणा का इतना स्रोत बनता है कि धीरे धीरे लोग लगते चले जाते, जुड़ते चले जाते। और इसलिए जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति का इतने वर्षों में स्खलन हुआ, आज पूरे भारत भर में बड़े बड़े शहरों में पिछले 50 वर्षों में अगर सबसे सुंदर कोई स्ट्रक्चर्स बने हैं तो वो है इस्कॉन के मंदिर। स्वामी नारायण के भी कभी अच्छे मंदिर बने हैं और दूसरे भी कई मंदिर बने हैं, लेकिन इस्कॉन के मंदिर जो बने हैं उसमें विशेषता ये कि जो भी इस मंदिर के परिवेश में प्रवेश करे उसे आध्यात्मिक ज्ञान और संकीर्तन के प्रति प्रेरणा और अपने व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार भक्ति का पालन करके अपने घर को मंदिर बनाने के लिए व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त होती है। इसके कारण आज केवल भारत में 225 मंदिर नहीं, लेकिन लगभग भारत में 2,00,000 गृहस्थ भक्तों के घरों में इस्कॉन के मंदिर चल रहे हैं। जिसने अपने घर में भगवान को निमंत्रण दिया उसका घर बन गया भवन, भवन अर्थात जहां भगवान हो। भवन से भगवान हटा दो तो क्या बचता है? वन। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने घरों को वृंदावन बनाएं, भगवान को अपने घर में प्रकट करें और वैदिक सभ्यता और संस्कृति के वास्तविक निष्कर्ष को अनुभव करें कृष्ण भक्ति के रूप में। पंजाबी बाग का ये सुंदर मंदिर एक ऐसा ही उदाहरण है जो कि पिछले कई वर्षों से रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के और यहाँ के बाकी सभी भक्तों के नेतृत्व में यहाँ के सभी लोगों को कृष्ण भक्ति का एक प्रेरणा स्रोत और आधार स्तंभ बन के चल रहा है और दिन दूनी रात चौगुनी यहाँ के भक्ति में परिवेश में वृद्धि हो, इस शुभकामना के साथ मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्वेश्चन हरे कृष्णा। तो बहुत धन्यवाद देंगे हम इस गेस्ट गौरांग प्रभु का। जैसे प्रभु जी ने बोला, स्टडी में राइट एग्जांपल एंड स्टडीली सर्विंग, उसके मूर्तिमान रूप हैं गौरांग प्रभु और पूरे विश्व भर में विख्यात हैं इस कथाओं के लिए और कितने इंस्पिरेशनल प्रेरणा देने वाले, क्योंकि अपने जीवन में इन्होंने भक्ति के सिद्धांतों को उतारा है। और जब हम ऐसे भक्तों को देखते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है भक्ति की विधि में, श्रील प्रभुपाद जी के दिए हुए सिद्धांतों में। तो जैसे प्रभु जी ने बताया किस प्रकार से 6 स्टेप से क्रमशः वैदिक संस्कृति का पतन हुआ और आज हम सबका यही कर्तव्य, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, हम इस कौन मंदिर में आते हैं, इस वैदिक संस्कृति और सभ्यता के लक्ष्य को जाने, कृष्ण भक्ति, उसको अपने जीवन में उतारें और इसका खूब प्रचार करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग प्रभु। और आप कितने भक्त चाहेंगे कि हमें गौरांग प्रभु का संग ज्यादा से ज्यादा मिले? तो सबका, भक्तों का प्रेम है आपके प्रति, तो कम से कम वर्ष में एक बारी तो आप हाँ बोल के जाइए, सही है ना? बोलिए। सो थैंक यू वेरी मच। इस गेस्ट गौरांग प्रभु की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बधाई। गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों के लिए प्रचुर मात्रा में प्रसाद है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, धारे बनाए रखने के लिए आप सबका और सर्वर्स के लिए। हरे कृष्ण।